بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، دیکھو تصرف کی حقیقت پر بات چل رہی تھی. تصرف کہتے ہیں کبھی کبھی کسی اللہ والے کی نظر پڑنے سے، توجہ ڈالنے سے، پھونک مارنے سے سامنے والے بدکار گنہگار کی دنیا پلٹ جاتی ہے، آخرت کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، تو اس کو تصرف کہتے ہیں. یہ اللہ کی طرف سے کسی کسی کو کبھی کبھی دی جاتی ہے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ ہر ایک کو اس طریقے سے کر دیا جائے اور کام بن جائے. نہیں، کرنے والی ذات تو اللہ ہی کی ہے، لیکن اللہ تعالی ان کو ذریعہ بنا دیتے ہیں اور ان کے ہاتھوں سے کام ہو جاتا ہے. ورنہ اللہ جس کو چاہتا ہے اسی کو ہدایت دیتا ہے، پھر ہدایت کے لیے راستہ کھول دیتا ہے. تو اب یہ تصرف بعض مرتبہ کسی بزرگوں میں نہیں ہوتا ہے، تو پھر وہ اس کو کوئی اللہ والا نہیں سمجھتا. تو یاد رکھو، تصرف بزرگی کے لیے لازم نہیں ہے. لہذا یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ جو بھی بزرگ ہوگا اس کو ضرور تصرف کرنا آتا ہوگا. جو بھی بزرگ ہوگا اس کو ضرور تصرف کرنا آتا ہوگا، ایسا نہیں. کتنے اولیاء اللہ ایسے ہیں، گزرے ہیں، جن کو تصرف کرنا نہیں آتا تھا، اس کی وجہ سے ان کے کمال میں کوئی نقص نہیں آیا. اصل کمال یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اتباع ہو. اصل کمال یہ ہے کہ حضور کی سنتوں کی اتباع ہو. سارے کمالات کا مرجع اور ماوا اور تمام کمالت کا منتہا یہ ہے کہ ہر زندگی کے ہر کونے میں، ہر گوشے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اتباع ہو. بس یہ ہے کمالات. کھانے میں، پہننے میں، بولنے میں، چلنے میں، ہاتھ اٹھانے میں، سب چیز میں سنتوں کی اتباع، نمازوں میں، روزوں میں، وضو میں، عبادات میں بھی سنت، اور روز مرہ کی زندگی میں بھی سنت. تو اصل میں یہ ہے اللہ والے کی علامت. تصرف حاصل ہوا یا نہیں، کوئی کشف ہوا یا نہیں، کوئی الہام آیا کہ نہیں، کوئی خواب نظر آیا کہ نہیں، کوئی کرامت ظاہر ہوئی یا نہیں، یا کسی نے کوئی خواب بیان کیا، انہوں نے خواب کی اچھی تعبیر دی یا نہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر عطا ہو جائے تو اللہ کی نعمت ہے، اگر عطا نہ ہو تو کوئی پریشانی کی اور نقص کی بات نہیں. دیکھا، لہذا اگر کسی بزرگ میں یہ بات موجود نہ ہو تو آدمی یہ نہ سمجھے کہ اس کی بزرگی میں نقص ہے. یاد رکھنا، آج کل لوگ اللہ والوں کو ہی نہیں پہچانتے. وہ آج ہمارے ذہنوں میں، ہمارے ماحول میں اللہ والوں کا ایک تصور ایسا بیٹھا ہوا ہے جس کے اندر ایسی ایسی چیزیں ہو کہ کوئی تصرف کر سکے، اور کچھ کرامت کچھ دکھا سکے، اور جو بولے وہ ہو جاوے. بس تو کہتے یہی بزرگ. یہ غلط چیزیں بیٹھ چکی ہے، بلکہ فرمایا یہ چیزیں بزرگوں کے لیے نہیں، اصل تو سنت معیار ہے اس کی زندگی. بلکہ ہمارے بزرگ تو ان خوارق سے دور ہٹتے ہیں. خوارق یعنی یہی کرامتیں، جو عادت کے خلاف جو کام ہوتا ہے، تو اس سے تو دور ہٹتے ہیں اور ان کو پسند نہیں کرتے. ان کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ خوارق ان سے ظاہر ہی نہ ہو تو بہتر ہے. ان کی خواہش یہ ہوتی، کیونکہ اسے پھر لوگ ان کو خدا بنا لیتے. ہاں، یہ اللہ والے کرتے. یہ حضرت نظام الدین से जो तबले की काम शुरू हुआ, और जो निजामुद्दीन, ये एक पुरानी मस्जिद थी जो बिल्कुल बंद पड़ी हुई थी, कैसे खुली, उसकी क्या हकीकत है। हजरत मां इलियास साहब के वालिद साहब मौलाना इस्माइल साहब रहमतुल्लाह अलैह, जो उनके देहात में रहते थे, कांधला में रहते थे, तो वहां पर लोग दम कराने आते थे, तो कोई पानी पड़ा ना, कोई बच्चे पर दम कराना, तो उनके दम से उनको अच्छा हो जाता था। तो यहां तक के मशहूर हो गए, तो उन्होंने सोचा कि ये लोगों ने तो मुझे खुदा बना लिया, और मेरा तो ये तो इनका तो ईमान खराब हो रहा है। तो वो उस जगह को छोड़कर चले गए ताकि लोग मेरे पास ना आवे, और बिल्कुल उस जमाने में जंगल था हजरत निजामुद्दीन, और वहां पर एक मस्जिद बंद पड़ी हुई थी, और उसको सफाई किया और उसको खोला और वहां पर रहते थे। तो ये था, तो वो तो इससे दूर हटते थे, ये नहीं कि हाँ, फला के बुजुर्ग, फला के अंदर दम में इतना दम है कि फिर लोग सारे के सारे कहते हैं अरे इस बुजुर्ग से होता है, नहीं। तो ये खवारी की आदत जो है उससे दूर हटते उसको पसंद नहीं करते, और अगर कभी उनसे हो भी जाता तो उसको बताते भी नहीं थे, कभी उसको बताते नहीं, उसको तो यूं समझते थे कि गोया ये तो एक नुक्स है, उसको छुपाते थे। इसलिए फरमाया करामत को छुपाना है, अगर हो भी गई तो उसको छुपाना है, जाहिर नहीं करना, वो अल्लाह ताला ही करवाते हैं, और अल्लाह ताला ही कुछ इनकी कबूलियत क्या होता है उसके लिए अल्लाह ताला किसी किसी अल्लाह वाले से इसे करा देते हैं, लेकिन हमें उसको जाहिर नहीं करना, जाहिर अल्लाह ही कर देते हैं। उनकी आदत ये होती है कि खवारिक उनसे जाहिर ही ना हो तो बेहतर है, इसलिए कि उनमें खतरात बहुत है, उसमें खतरात बहुत है जी। अगर इंसान का जरा सा भी कमजोर हो गया ईमान, तो कहां से कहां निकल जाएगा, बहुत, इसलिए कि इनमें खतरात बहुत है, क्योंकि आज अगर किसी को जरा कशफ हो जाएगा तो अपने आप को मालूम नहीं क्या से क्या समझ बैठेगा, थोड़ा सा अगर कशफ हो गया तो ओहो, क्या से क्या समझ बैठेगा, और उसके दिमाग में कैसा खन्नास पैदा हो जाएगा, अगर सही इसलाह नहीं हुई है, और अगर उसको कशफ हो गया तो फिर गया काम से, वो गया काम से, वो तो क्या से क्या समझेगा। फिर उसको अगर कोई जाके समझाएगा तो कहेगा तुम मेरे पर हसद करते हो, मेरी मकबूलियत अल्लाह ने दी है। फिर वो दूसरा समझाने वाले को गलत समझेगा। तो ये है कि फिर लोगों पर अपनी बड़ाई जताने लगेगा, उसमें खन्नास आएगा, और उसकी वजह से किब्र और उज्ब पैदा हो जाएगा, इस तरह वो गुनाह कबीरा में मुब्तला हो जाएगा, जिसका एंड ये है। इसलिए ख्वाबों के पीछे पड़ना नहीं है। और अगर हमसे कोई ऐसी चीजें हो गई, कभी अल्लाह ने करा दी, तो उसको छुपाना है, उसको कहते नहीं फिरना है, बहुत बहुत कहना है तो अपने रहबर से, शेख से कह दे, बाकी और कहीं भी किसी को, आज तो हम हर एक को कहते तो मेरे से तो यूं हो रहा है, मेरे से तो यूं हुआ, और होता है थोड़ा सा और बताते ज्यादा, तो उसमें झूठ भी हो जाता है, और फिर पर उसमें फिर किब्र भी आ जाता है, पता नहीं कई गुना हो जाते, तो गुनाह कबीरा हो जाता है। हजरत हाजी साहब रहमतुल्लाह अलैह का वाकया है कि एक मरतबा खाना कम था और खाने वाले ज्यादा थे, खाना कम था और खाने वाले ज्यादा थे, तो आपने अपना रुमाल उस खाने पर डाल दिया जिसकी बरकत से वो खाना पूरा हो गया। हजरत हाफिज जामिन शहीद रहमतुल्लाह अलैह, जो हजरत हाजी साहब के दोस्त और हम असर थे, उनके जमाने के थे, और एक ही खानकाह में बैठते थे, हाफिज जामिन और हाजी मदादुल्लाह मक्की और एक दूसरे बुजुर्ग थे जिनका किस्सा था, मां रशीद अहमद साहब को जब दावत में गए थे तो ये लोग दो जन साथ में थे, उसमें हाफिज जामिन साहब एक ही खानकाह बैठ, उनको जब रुमाल डालने के बारे में पता चला तो हाजी साहब से कहा वाह अब आपका रुमाल सलामत चाहिए, कहा आपका रुमाल सलामत चाहिए, अब दुनिया में किसी को किसी चीज की किल्लत नहीं हुआ करेगी, अभी आपका रुमाल यानी ऐसा बन गया है कि अब किसी चीज की किल्लत कमी नहीं रही, गोया कि उन्होंने इस अमल पर नापसंदगी की इजहार किया, हाफिज जामिन साहब ने इस अमल पर नापसंदीदगी का इजहार किया कि आपने अच्छा काम नहीं किया, इससे लोगों का अकीदा खराब हो जाएगा। देखो ये तो अल्लाह वाले थे, कामिल थे, उसके बावजूद भी वो भी कामिल है, ये भी कामिल है, उसके बावजूद भी वो कह रहे। और अगर हम जैसे से ऐसा हो गया तो खत्म। कामिल लोगों से भी ये बात होना उनके लिए पसंद नहीं है। तो फरमाया लोगों का अकीदा खराब हो जाएगा कि बस रुमाल डालो और चीजों में इजाफा करा लो। उस पर हजरत हाजी साहब ने नदामत का इजहार किया कि वाकई मुझसे गलती हो गई। अल्लाह, क्या अल्लाह वाले थे, क्या फरमाया, वाकई मुझसे गलती हुई। और आजकल तो ओहो, ये तो फुला मुझ पर हसद कर रहा है, ये फुला मुझ पर हसद कर रहा है, देखो मेरे बारे में कैसी बात कर। अरे अल्लाह ने करवाया, मैंने थोड़ी किया है, और तुम मुझे ऐसा कह रहे हो। अरे देखो हाजर हाजी साहब भी तो कह सकते थे, भाई मैंने थोड़ी किया है, और मेरा ईमान भी ऐसा है कि अल्लाह ही ने किया, लेकिन फिर भी कहते मेरे से गलती हो गई। इसको कहते हैं छुपाना, हालांकि कोई गलती नहीं, उनका अकीदा भी खराब नहीं हुआ, लेकिन लोगों का अकीदा खराब होने का इम्कान है। इसलिए उन्होंने कहा कि मुझसे गलती हुई, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, लिहाजा हमारे हजरत इन चीजों से बचते थे। अल्लाह अकबर कबीर। याद रखिए, देखो शैतान का हमला कहाँ होता है, ये देखो, कभी कभी हम थोड़े नेक बन जाते हैं तो फिर शैतान ऐसे हमलों से हमें फिर मारता है। क्या है, करामतों से, कुछ काम होने से, कुछ फूकने से, कुछ काम बन गया, बस अब वहां से हमारी पटरी बदल गई। तो आ रहे थे सीधे सीधे रास्ते में, उसने फिर हमें बहका दिया। पहले किसी और के जरिए से बहकाया, गुनाहों के जरिए से, बेदीनी के जरिए से, अब शक्ल तो दीनदारी है लेकिन अब किसी और के जरिए से बहकाया। तो उसके पास बहकाने के बहुत रास्ते हैं। जैसे अल्लाह ताला के पास अपने पास आने के कितने रास्ते हैं, जितने मखलूक के सांसे हैं, ऐसे ही शैतान के पास बहकाने के भी ऐसे ही रास्ते हैं। एक किताब मिल गया, पता नहीं कितने हजार नूरानी पर्दे हैं, और वो हमें उससे बहकाता है। जुल्माती पर्दे अलग, नूरानी पर्दे अलग, ये नूरानी पर्दे कि दीन की शक्ल में हमको बहकाया, और गुनाह की शक्ल में बहकाना, ये जुल्माती पर्दे होते हैं। उसके बहकाने के बहुत सारे रास्ते हैं। इसलिए फरमाया इस्लाह नाम है कि इंसान ये समझ जाए कि मुझे शैतान अभी इस तरह से आ रहा है, नफ्स इस रास्ते से आ रहा है, और ये भी अल्लाह के जाने का रास्ता है, तो वो दीन को फिर नॉर्मल समझेगा। फिर अल्लाह ताला उसके सीने में शरह सद्र कर देते हैं, सीने में वुसअत हो जाती है, फिर दीन में तंगी नहीं रहती है, दीन में वुसअत समझता है कि कैसे वुसअत देकर हर एक को अल्लाह से जोड़ सके। चुनाचे जहां कहीं लोगों में कशफ करामात इल्हामात का जौक पैदा हो जाता है, लोगों में कशफ का करामात का इल्हामात का जौक पैदा हो जाता है, तो अगरचे शुरू में तो हुदूद से तजावुज न हो शुरू में, लेकिन जब आगे बढ़ते हैं तो उसके नतीजे में गुमराही में मुब्तला हो ही जाते हैं। पीरा नमी परन मुरीदा मी परानीद, पीरा नमी परन मुरीदा मी परानीद, यानी फिर क्या होता, अगर ये चीज कशफ करामात इल्हामात अगर हो गई तो शुरू में तो हुदूद में है, लेकिन आगे क्या होता है, गुमराही में मुब्तला हो जाता है। तो एक शेर कह रहे हैं कि फिर पीर पीर उड़ता नहीं है, अरे मुरीद पीर को उड़ाते हैं, यानी पीर अगर गुमराह नहीं होते तो मुरीद आगे चलकर गुमराह हो जाते हैं। कभी मुरीद पीर को भी गुमराही की तरफ ले जाता है, और कभी पीर तो अपने हिसाब से कंट्रोल में रहा तो मुरीद गुमराही में मुब्तला हो जाता है। यानी वो मुरीद की इतनी तारीफ करते हैं कि अल्लाह की तारीफ इतनी नहीं करते, यह है गुमराही। भाई सब कुछ करने वाला अल्लाह है, इनसे तो उस तो मुरीद हमने पीर के पास आई है ताकि अल्लाह तक हम पहुंचे, हमें पीर को खुदा नहीं बनाना है, بلکہ اللہ تک ہمیں پہنچنا ہے تو یہ ہمارے لیے راستہ بنے گا، تو ہم ان کی کشف و کرامت کو دیکھ کر ہم کہاں سے کہاں نکل جاتے. اسی لیے یہ گمراہی جو آئی تو ان لوگوں نے کیا، مریدوں نے پیروں کو ہی ایسا غلط بنا دیا کہ پیر بھی سمجھے کہ ہاں ہم بھی کچھ ہے اور راستے سے ہٹ گئے. اسی لیے تو لوگ اب صوفیزم سے، تصوف سے یعنی بدگمان ہو گئے، بولے یہ تو بہت سارا بدعت ہے. ارے بدعت نہیں ہے، بدعت ہو گیا تھا، اب اللہ نے اس میں سے پھر حق نکالا ہے. تو یعنی پیر اگر گمراہ نہیں ہوتے تو مرید آگے چل کر گمراہ ہو جاتے ہیں. چنانچہ چند سال پہلے ایک صاحب کے ساتھ ایسا واقعہ پیش آیا، تو وہاں پر شروع شروع میں ایسی کوئی خرابی کی بات نظر نہیں آتی تھی، لیکن جب ان باتوں پر زیادہ زور دیا گیا تو اس کے نتیجے میں وہ گمراہی کے راستے پر پڑ گئے. اس لیے ہمارے حضرات ان کشف و کرامت کے چرچے اور ان کی طرف توجہ رکھنے کو پسند نہیں فرماتے. کشف و کرامت کی کیا باتیں کرنی، وہ کرنا ہی نہیں چاہیے، وہ ایک ہونے والی چیز تھی، ہو گئی، ختم ہو گئی. لیکن اب ہمارے مرید وہ پیر کی تعریف کریں گے تو کشف و کرامت ہی زیادہ بیان کرتے، او ہمارے پیر تو ایسے ہیں، ہمارے پیر تو ایسے، ہمارے پیر تو یوں کیا اور یوں کیا. پیر کامل ہوتا ہے تو پیر تو گمراہ نہیں ہوتا، لیکن اس نے خدا سے ہٹ کر پیر کی طرف گودا خدا بنا لیا. ارے نہیں، اس کا مرتبہ اتنے ہی درجے میں ہے. اس لیے بعضوں نے تو نبی کو بھی اس سے آگے بنا دیا کہ بھائی یہ بھی ہر جگہ پر آتے ہیں. ارے اللہ ہی ہے، پھر بھی اللہ کے بعد دوسرے نمبر نبی کا درجہ ہے. تو ہم تو یہ جو بیلنس سے ہٹ جاتے ہیں وہیں سے گمراہی شروع ہو جاتی ہے، اس کو نورانی پردے کہتے ہیں. اس لیے کئی جگہ پر ہم نے دیکھا، اور میں تو سفر کیا، مجھے پتا ہے کہ اگر واقعتاً اللہ نے کمال عطا نہ فرمایا ہو اور اللہ کی مدد نہ ہو تو واقعتاً مرید ہی پیر کو گمراہ کر دیتے. اتنی تعریف کرتے، اتنے تعریف کے الفاظ، کبھی خاموش کرنا پڑتا ہے، بھائی بس میں کچھ نہیں ہوں، اللہ سب کچھ ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ نے دعوت کے راستے میں لگایا ہے، جس کی وجہ سے اس میں تعریف ہے ہی نہیں، یہاں تو سیدھی بات ہے. تو تعریف کے بھی حدود ہوتے ہیں، حدود کے آگے جو نکل جاتے ہیں نا وہیں سے گمراہ ہو جاتے. آگے دیکھو، جس سے بعض لوگوں کو یہ بھی خیال گزرا کہ شاید ان حضرات میں یہ چیز تھی ہی نہیں، یہ چیزیں تھی ہی نہیں، اور بالفرض اگر یہی مان لیا جائے کہ آج کل کے بزرگوں میں یہ چیزیں ہے ہی نہیں، تو اس سے بھی یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ یہ چیزیں اختیاری نہیں ہیں، کشف و کرامت اختیاری نہیں ہیں. اب رہا یہ اعتراض کہ پہلے زمانے میں جو اولیاء اللہ ہوتے تھے وہ تو بڑے کشف و کرامت والے بزرگ ہوتے تھے، ان کے کشف کے ایک سے ایک واقعہ سننے میں آتے تھے. اب کوئی اللہ کا بندہ ایسا نظر نہیں آتا، اب تو نہ کشف ہے نہ کرامت ہے، ایسے اللہ والے کہاں سے لائے، ایسا بزرگ تو اب ملتا نہیں. بہت سے لوگ ایسا کہتے ہیں کہ ہاں مجھے بیعت تو ہونا ہے، پیر تو بنانا ہے، لیکن ایسا پیر کہاں سے لاؤ، پیر ہے ہی نہیں اسی دنیا میں. اب لو یہ بھی گمراہی دیکھی، کہا اب وہ پیر کو دیکھتے ہیں جنید بغدادی، بایزید بستامی، اب ایسے ایسے پیروں کو ڈھونڈ رہے، تو ایسا پیر تھوڑی ملے گا. تو فرمایا اب نظر ہی نہیں آتا، اب تو نہ کشف ہے نہ کرامت ہے، ایسے اللہ والے کہاں سے لائے، ایسا بزرگ تو ملتا نہیں. اس کا جواب وہ ہے جو غالب نے ایک مصرعے میں کہا ہے، دیتے ہیں باتا ظرف قدح خوار دیکھ کر، قدح خوار دیکھ کر. ممکن ہے کہ آج کل ایسی کیفیات کے عمومی اظہار سے بزرگوں کو خود چاہیے نقصان نہ ہو، عمومی اظہار سے بزرگوں کو خود چاہیے نقصان نہ ہو، مگر عوام الناس کو اس سے نقصان کا خطرہ زیادہ ہے. اس لیے ایسی کیفیات کا عموماً اظہار نہیں کرتے اللہ والے. اللہ والے آج بھی ایسے ہی ہے جیسے پہلے زمانے میں تھے، لیکن پہلے زمانے میں کرامت اور کشف ظاہر ہوا اور اللہ نے کیا ہے وہ ان لوگوں کی یعنی وہ عام پبلک کی حالات کو دیکھ کر، اور اس وقت اللہ تعالیٰ ان سے یا ان سے ہوتا بھی ہے لیکن اظہار نہیں کرتے، وہ اس وجہ سے وہ بھی پبلک کے حالات کو دیکھ کر کہ کہیں نقصان نہ ہو، مگر عوام الناس کو اس سے نقصان کا خطرہ زیادہ ہے. इसलिए इन कैफियतों में कमी कर दी गई अल्लाह ताला की तरफ से। फिर ये चीजें फजीलत और शराफत और बुजुर्गी का मैयार भी नहीं है। फिर ये चीजें कि फजीलत इससे बढ़ जाती हो या उनकी शराफत बढ़ जाती हो, उनकी बुजुर्गी बढ़ जाती हो, इसके लिए ये चीज है भी नहीं। हाँ, बुजुर्गी का अलामत कुछ और है और इसकी वजह से बुजुर्गी डबल हो जाएगी, ऐसा भी नहीं है। ये तो अल्लाह की ही तरफ से है, अल्लाह ताला किसी से कराते हैं किसी से नहीं कराते, पहले जमाने से करवाया इस जमाने में नहीं हो रहा, ये सब अल्लाह की तरफ से है। मैयार भी नहीं और न बुजुर्ग के लिए चीजें लाजिम है। लिहाजा जब किसी बुजुर्ग के पास जाओ तो ये सोचकर मत जाओ कि उनको ये चीजें हासिल होगी। हाँ, ये चीज क्योंकि आज आवाम में चीजें आ गई है, दिमागों में चीजें बैठी हुई है, बुजुर्गों के पास जाते हैं तो वो ये देखना चाहते हैं कि बुजुर्ग की कौन सी दुआ जो मुझे लगी मेरा काम बन गया, और अगर दुआ दी और मेरा काम नहीं बना तो बोले यार नहीं, इनके पास तो नहीं जाना है, ऐसे के पास जाए जहां मेरा काम बन जाए। तो गोया काम बनाने के लिए आए हैं या इसलाह कराने के लिए आए हैं? भाई असल इसलाह है, इसलाह तो हो जाएगी, लेकिन काम का बनना न बनना ये तो अल्लाह के हाथ में है। हर बुजुर्ग दुआ तो कर देता है कि भाई ये परेशानी है, दुआ करे अल्लाह आपकी परेशानी को दूर करे। अब दूर नहीं होती तो कहते यार अल्लाह वालों से दुआ कराया लेकिन मेरा काम नहीं बना। नहीं, काम तो अल्लाह जब चाहेंगे बनाएंगे, दुआओं के जरिए से काम बन जावे ये नहीं, दुआ कराते रहना, अल्लाह जब चाहेंगे काम बनाएंगे। जी आगे हजरत वाला फरमाते हैं, हजरत थानी रहमतुल्लाह अलैह, बहुत से बुजुर्गों में तसर्रुफ मुतलक नहीं होता और दूसरा तसर्रुफ के असर को बका नहीं होता, यानी जो चीज तसर्रुफ से अचानक एकदम किसी की काया पलट जाती है, कोई दीन पर आ जाता है तो फरमाया तसर्रुफ के अंदर बका नहीं है। अगर उसको अब बाकी रखना है तो उसको मेहनत करनी पड़ेगी, जब जाके वो बाकी रहेगा, लेकिन अचानक उसका दिल पलट गया है अब वो मौत तक पलटा हुआ रहेगा ये नहीं हो सकता है, इसमें बका नहीं इस असर में। हाँ, एक धक्का है, जैसे गाड़ी को धक्का लगाया है अब चलेगी नहीं, अब चलेगी तो अपने अंदर की ताकत से चलेगी, अंदर की ताकत स्टार्ट हो गई तो चल पड़ेगी, अब रुकेगी नहीं, जब रुकूंगे नहीं। तो ऐसे ही ये तसर्रुफ जो है वो एक धक्का लगाते हैं, अब धक्का लगाने के बाद अंदर की ताकत का अगर इस्तेमाल हुआ तो चल पड़ेंगे और नहीं हुआ तो वहीं थोड़े दिनों के बाद रुक जाएंगे। इसीलिए अल्लाह के रास्ते में जब जाते हैं तो हमें एक धक्का लगा, क्या होता है कि हमारी जिंदगी में जब वापस आते हैं ना तो चेंजिंग होती। अब वो जो धक्का लगा था वो हफ्ता दो हफ्ता किसी को महीना भर वो गाड़ी चलती है, उसके बाद फिर वही जिंदगी पिछली लौट आती। तो ये हर एक को सवाल है जो बेचारे अल्लाह के रास्ते में जाते हैं, ये सवाल क्यों है कि एक धक्का लगा था और हम ये समझे कि नहीं अब मेरा काम हो गया, मैंने चिल्ला लगाया अब मैं मौत तक दीन पर बाकी रहूंगा, ये नहीं हो सकता, ये तो धक्का लगा है। अब मकाम में आकर मकामी काम करना पड़ेगा, उलमाए किराम से मिलना पड़ेगा, मसाइल पूछ पूछ कर चलना पड़ेगा, अल्लाह वालों से मिलना पड़ेगा, वहां थोड़े बहुत अपने अंदर के गुनाहों की छुटने की बातें करनी पड़ेगी, जब जाके इसकी गाड़ी चलेगी मौत तक। आज तो हमने वक्त लगा दिया और बोले बस, तो वो जो धक्का लगा था वो हफ्ते दो हफ्ते के बाद फिर वही जिंदगी चिल्ला जाने से पहले जो बिगड़ी हुई थी वही बिगड़ी हुई हो गई। अब वो बेचारा सोचता है कि मेरी जिंदगी क्यों नहीं बदल रही, तो उसके लिए जरूरी है कि आगे काम खुद करे, यही बात है। जैसे पहले अर्ज किया था कि तसर्रुफ के असर से वक्ती तौर पर जरा सी गर्मी पैदा हो जाती है, जरा सी गर्मी पैदा हो जाती है, लेकिन इस असर को बका नहीं होता, आगे काम अपनी हिम्मत और इख्तियार से चलेगा। काम तो अपनी हिम्मत और इख्तियार से चलेगा और अपने अमल से चलेगा। तसर्रुफ का अमल सिर्फ गाड़ी को धक्का लगाने की तरह है, तसर्रुफ ने तो एक धक्का लगा दिया लेकिन आगे गाड़ी अपने इंजन की ताकत से चलेगी। जी तसर्रुफ की मिसाल समझे। फिर आगे हजरत वाला ने तसर्रुफ की एक मिसाल देते हुए फरमाया, उसकी मिसाल ऐसी है कि कोई शख्स तन्नूर के पास बैठ गया, तन्नूर जो आग वो रोटी बनाते हैं, तंदूर जो नीचे आग चलते हैं, तंदूर के पास बैठ गए तो जब तक वहां बैठा हुआ है तमाम बदन गर्म है, मगर जैसे ही वहां से हटा फिर ठंडा का ठंडा, बखिलाफ उसके जो अपनी हिम्मत अपने आमाल के जरिए असर होता है वो बाकी रहता है, और इसकी मिसाल ऐसी है जैसे किसी ने कुश्ते तिला खाकर अपने अंदर हरारते गुरेजी पैदा कर ली, यानी अपने अंदर एक हरारत यानी भागम दौड़ी की, उसको हरारते गुरेजी कहते हैं, पैदा कर ली, तो अगर वो शिमला पहाड़ पर भी चला जाएगा तब भी वो हरारत बदस्तूर बाकी रहेगी, वो खाकर अपने अंदर हरारत पैदा कर दी। ये बर्फ का पहाड़ है शिमला, तो फिर वहां पर भी चला जाएगा तब भी उसकी गर्मी बाकी रहेगी, तो अपने अंदर की गर्मी लाओ जी। तसर्रुफ और अपनी हिम्मत दोनों को दो मिसालों के जरिए समझा दिया, तसर्रुफ और अपनी हिम्मत इन दोनों को दो मिसालों के जरिए समझा दिया कि तसर्रुफ के नतीजे में जो हरारत पैदा होती है वो आरजी होती है, वो फना हो जाने वाली है, जैसे तंदूर के पास बैठने वाले के जिस्म में हरारत तो पैदा हुई लेकिन वो हरारत आरजी है, वक्ती है, जल्द खत्म हो जाएगी। इसी तसर्रुफ के नतीजे में ये होता है कि कुछ देर के लिए जरा सा निशात पैदा होगा फिर खत्म हो जाएगा, आगे अमल अपनी हिम्मत से ही करना होगा और मुजाहदा और रियाजत के जरिए और अपनी हिम्मत के जरिए जो अमल किया जाता है उसको बका होती है। इसलिए फरमाया असल मुजाहदा तो जब जमात में से वापस आते हैं घर पर रहकर काम करना, ये असल मुजाहदा है जी। और हम तो उसको नहीं, वो तो धक्का लगाने के लिए उसके जरिए से हमेशा दिन पर चलेंगे, नहीं, ये बात ध्यान में रखे, बहुत सारे सुनने वालों के दिलों में सवालात होते हैं, तो इसलिए उसी को काफी न समझे, उसके बाद पूरी मेहनत करनी है और अपनी हिम्मत से चलना है, उसको बका होती है, वो पायदार होता है, वो जल्दी फना नहीं होता। उसी को भी दूसरी मिसाल के जरिए समझाया कि जैसे किसी शख्स ने सोने का कुश्ता खा खा कर एक हरारत ली ओवन के पास बैठकर मिल गई, और एक हरारत ली है दवा खाकर, तो हरारत उधर से मिली, हरारत इधर से भी मिली, उधर से जो हरारत और गर्मी मिली है वो वहां से हट जाएंगे तो खत्म, और वो जो दवा खाकर कुश्ता खाकर जो अंदर गर्मी आई है तो फरमाया वो बर्फ के पहाड़ पर भी चला जाएगा तो वहां पर भी वो गर्मी बाकी रहेगी, यानी चल पड़ेगा अंदर की गर्मी से। इसको कहते हैं अंदर की गर्मी, उसको कहते हैं बाहर की गर्मी, वो सिर्फ धक्का लगा है और ये अंदर के अंदर आई है, तो जिसके जरिए से वो हिम्मत बाकी रहेगी, तो ये समझा रहे थे। तो समझ में आ गई बात कि वो जो गर्मी है वो बाहर की है, जब हटोंगे तो खत्म, ये गर्मी अंदर की है जिसमें चलेगी, ठंडक में भी चला जाएगा तो भी गर्म रहेगा, वो शिमला पहाड़ पर भी चला जाएगा तब भी उसकी हरारत बदस्तूर बाकी रहेगी। इसलिए इस फिक्र में नहीं पड़ना चाहिए कि कोई तसर्रुफ कर दे, बल्कि सीधी सीधी बात यह है कि सुन्नत का जो तरीका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है उस पर अमल करना शुरू कर दो, ये सीधी सीधी मेन। उसके जरिए से क्या होगा कि अंदर जब ईमान पैदा होगा ना अंदर, तो क्या होगा फिर उसको अगर गुनाहों के माहौल में भी डाल दोगे तो भी ईमान वाला रहेगा और वहां से वो नहीं होगा, और अगर बाहर का ईमान का माहौल मिला था जैसे बाहर की गर्मी मिल रही थी तो अगर बेईमान के माहौल में चला जाएगा तो वहां बेईमान हो जाएगा, क्योंकि ठंडक मिल गई, समझे, तो ईमान के माहौल में था तो उसको ईमानी गर्मी मिल रही थी और चल पड़ रहा था, और जहां बेईमानी के माहौल में गया तो वहां की ठंडक उसको लग गई और वो सारा असर खत्म हो गया। और एक है अंदर ईमान की हरारत पैदा हो गई है तो वो दूसरों को भी गर्म कर देगा, और गुनाहों के माहौल में भी बेईमानी के माहौल में जाकर भी वो ईमान पर जमा रहेगा, क्यों जमता है कि अंदर की हरारत है, अंदर की हरारत है, तो ये है। इसलिए हमें दावत और तबलीग के जरिए से अपने अंदर ऐसा ईमान पैदा करना है कि दुनिया के किसी भी कोने में चले जाए, किसी माहौल में भी भेज दिया जाए, हम उस माहौल को बदल सकते हैं, वो माहौल हमको नहीं बदल सकता, ऐसी अंदर की गर्मी पैदा करनी जी। ये था सहाबे किराम के अंदर कि उनके अंदर ईमान की ऐसी गर्मी पैदा हुई है कि वो कैसे भी माहौल में चले गए, वहां की जबान तक बदल दी और सब कुछ बदल दिया, वो खुद नहीं बदले, उन्होंने बदल दिया, उनके माहौल ने, इन्होंने असर नहीं लिया माहौल से, तो उसको कहते हैं अंदर की गर्मी। तो वो तंदूर की, ओवन की गर्मी बाहर की थी, जब तक बैठो तो अच्छा लगा, हटो तो ठंडक मिल गई। तो आजकल जो हम चल रहे हैं ना, वो माहौल की वजह से चल रहे हैं कि हमारा माहौल दीनदार है, जहां शराब नहीं पी जाती इसलिए हम नहीं पीते, जहां चोरी नहीं होती इसलिए हम नहीं करते, लेकिन माहौल में गिबत है तो हम गिबत कर लेते। तो माहौल वाला ईमान है, तो हमें हकीकत में अंदर ईमान पैदा करना है। ये जो सबक है और ये जो इसलाह है, वो इसलाह का नाम ही ये है कि अपने अंदर ऐसी ईमान पैदा करो कि फिर दुनिया में चलो तो आप अपने ईमान से चल सकते हैं और गुनाहों से मुतासिर नहीं हो सकते। जी, ये तो बात आ गई, तो थोड़ी समझा दी। तो फरमाया, असल तो जो है, सीधी सीधी बात यह है कि सुन्नत का जो तरीका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है, उस पर अमल करना शुरू कर दो। किसी ने खूब कहा है, बर सिरात मुस्तकीम ये दिल कसे गुमराह नेस्त। सुन्नत के रास्ते पर चलने से गुमराही का कोई खतरा नहीं, बस उसको इख्तियार कर लो। सुन्नत के रास्ते पर चलने से गुमराही का कोई खतरा नहीं, गुमराही का भी खतरा नहीं और तकब्बुर का भी कोई खतरा नहीं, कोई 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 गुना भी नहीं आएगा। सुन्नत के रास्ते पर चलोगे तो सारे गुना भी खत्म। क्योंकि गिबत करना कोई है सुन्नत तो है ही नहीं। सुन्नत चल पर चलना है भाई, ये सुन्नत है, नहीं है तो छोड़ दो उसको, तो सारे गुना छूट जाएंगे, क्योंकि आपने बचे हैं, आप बदगुमाने से बचे हैं, तो इंसान बदगुमाने से बचेगा। हाँ, तो क्यों नहीं, तो हराम है। सुन्नत का रास्ता इख्तियार करेंगे उससे तरक्की होगी, वो तो फराइज में से है। तो जब इंसान सुन्नत पर वही चल सकेगा जो पहले फराइज से बचेगा, फिर सुन्नत पर चलना शुरू करे। देखो, इत्तिबाए सुन्नत से वसूल तेजी से होता है, वो दोनों आपस में मिले जुले होते हैं। इसीलिए कहते हैं ना कि अल्लाह के हुक्म को नबी के तरीके पर पूरा करना है। हमारे पहले नंबर है ना, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। क्या मतलब? अल्लाह के हुक्मों को पूरा करना है, लेकिन नबी के तरीके पर पूरा करना है। अल्लाह का हुक्म पूरा होगा, तरीका नबी का नहीं होगा तो भी गलत, और नबी का तरीका है लेकिन हुक्म अल्लाह का नहीं है तो भी गलत। तो अल्लाह के हुक्म को नबवी तरीके पर पूरा करेंगे तो तेजी से हमारा वसूल होगा। तो इत्तिबाए सुन्नत से वसूल तेजी से होता है। हकीम उल उम्मत हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मुख्तलिफ बुजुर्गों ने जो मुख्तलिफ रास्ते इख्तियार किए हैं और मुख्तलिफ किस्म के मुजाहदात, मुख्तलिफ किस्म की रियाजतें अपने अपने तजर्बात से इख्तियार की है और मुख्तलिफ किस्म के तसरुफात इख्तियार किए हैं, इन रास्तों के जरिए वसूल इलल्लाह देर से होता है। देखो, इन रास्तों के जरिए से वसूल इलल्लाह देर से होता है। मुख्तलिफ मुजाहदात जो होते हैं ना, तो बुजुर्गों ने अलग अलग लोगों से अलग अलग मुजाहदात कराए हैं। तो फरमाया, एक रास्ता इत्तिबाए सुन्नत का है, एक रास्ता इत्तिबाए सुन्नत का है। इत्तिबाए सुन्नत का मतलब यह है कि हदीस की कोई किताब, जैसे मसलन उसवे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सामने रखो और उसमें देखो कि हुजूर अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या क्या सुन्नतें बयान की गई, उनमें से एक एक सुन्नत लेकर उस पर अमल करते रहो, और जिस सुन्नत पर अमल करने की आदत नहीं है उसकी आदत डालते जाओ। हजरत थानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इत्तेबाए सुन्नत के रास्ते से वसूल तेजी से होता है। अल्लाह अकबर। देखो, क्यों कि ये भी एक मुजाहदा है। एक तो सुन्नत वो है जो हमारे माहौल में आम है, जैसे खाने पीने की, तो उसमें तो हम हैं, लेकिन यहां तो हर एक सुन्नत को देख देख कर करो। हाँ, तो फिर क्या है, इसमें मुजाहदा होगा। तो वही अल्लाह वाले क्या कराते हैं, वो जो सामने नफ्स हमें सताता है, कोई मुरीद अपने शेख से जब पूछता है तो शेख समझ जाते हैं, फिर उसको वही चीज सुन्नत के मुताबिक जो होती है वही बताते हैं, वो उस पर अमल करना शुरू कर देता है, उससे आगे गाड़ी चल जाती। کیونکہ سنت کے مقابلے میں بدعت ہوتی ہے، اس کا مقابل بدعت ہوتا ہے. تو انسان کو سنت پر جب عمل کرے گا تو بدعت ختم ہوگی آٹومیٹک. دنیا میں جو بدعات شروع ہو گئی ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اتنی سنتیں مٹ گئی. سنتیں جب چلے گی تو بدعتیں ختم ہوگی، دونوں ایک ساتھ میں نہیں رہ سکتی. اتباع سنت میں محبوبیت کی شان ہے، اتباع سنت میں محبوبیت کی شان ہے. پھر اس کی وجہ بھی بیان فرمائی کہ اتباع سنت کی خاصیت محبوبیت ہے. تو ہر کام میں، اسی لیے ہمارا سیدھا سادہ جملہ ہوتا ہے دعوت و تبلیغ میں، کیا ہے بھائی؟ اللہ کے حکم کو نبوی طریقے پر پورا کرنا. بس مثال کے طور پر کھانا اللہ کا حکم ہے، کولو وشربو. آج ساری دنیا کھا رہی ہے، مسلم بھی کھا رہا ہے، غیر مسلم بھی کھا رہا ہے، سب کھانا ہے. تو وہ تو عمل تو کر رہے ہیں، لیکن ہمیں کھانا ہے نبی کے طریقے پر. تو اب یہ حکم پورا ہوا. تو کھانا ہے، اگر کھانا کھایا ہم نے غیروں کے طریقے پر مسلمان ہو کر، تو اس نے اللہ کا حکم تو پورا کیا، لیکن طریقہ نبی کا چھوٹا ہے. اس لیے اس حکم کے پورا کرنے کے اندر اس کو وہ برکات اور وہ فائدے نہیں ملیں گے جو اللہ نے رکھے. جیسے کھانا، جیسے شادی، قرآن کا حکم ہے فنکحو کہ نکاح کرو، تو یہ حکم ہے. اب اس حکم کو پورا کرنا ہے نبوی طریقے پر، کہ میرے نبی نے نکاح کا کیسے حکم دیا ہے، کیسے کیا ہے، بس اس حکم کو اس طریقے پر کرو. تو ہو گیا کام، عمل کامل. اب تم نے اگر نکاح کیا لیکن نکاح میں غیروں کا طریقہ لیا، چاہے کتنا ہی مجاہدہ، کتنا ہی خرچ کیا، لیکن اس میں برکت ہے ہی نہیں. تو دیکھو، تو ہم نے آج کل ہم نے حکم تو اللہ کا ہے پورا کر رہے ہیں، لیکن طریقہ نبی کا چھوٹ رہا ہے. جیسے بھائی گھومنے جاؤ، سیرو فی الارض، کہ بھائی تفریح کرو، اللہ کا حکم ہے، لیکن طریقہ نبی کا لینا پڑے گا. کہ بھائی نبی کا طریقہ کیا ہے؟ کہ وہاں جاؤ تو کس نیت سے جاؤ، پھر وہاں جا کر کو اللہ کا حکم نہ ٹوٹے، وہاں کسی کو ملے تو ان سے وہاں نمازوں کا اہتمام کرے. تو یہ ہے، تو پھر کوئی کوئی گھومنا نہیں. آج تو بولے نے قرآن میں آیا ہے، بولے گھومو پھرو اور صحت کے لیے اچھی چیز ہے، چلو ٹھیک ہے. تو ایک چیز کو یاد رکھتے ہیں، دوسری چیز کو بھول جاتے. بھائی نکاح تو بولو، نکاح تو قرآن کا حکم ہے، بولے تو فرائض میں سے ہے، یہ تو کرنا چاہیے، تو پھر طریقہ لو نا. تو آج ہم سے جو چھوٹ گیا ہے وہ ایک چیز، ایسے ہی ہر چیز میں. یہ میں نے چند مثالیں دی کہ اللہ کا حکم پورا ہو رہا ہے. جیسے سونا، بھائی آرام کرنا ہے، وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، وہ آرام کے لیے بنائی رات، لیکن فرمایا آرام کرنا ہے تو طریقہ نبی کا. تو نبی کے طریقے سے وہ پوری کی پوری عبادت بن جاتی. پھر وہ کھانا بھی عبادت، وہ نکاح بھی عبادت، وہ سونا بھی عبادت. اور اگر وہ طریقہ نبی کا نہ لیا تو پھر وہ عبادت نہیں بنے گی. اب سمجھ میں آ گئی بات؟ ہاں بھائی. جی، تو طریقہ یہ ہے کہ آج ہمارے اندر سے نبی کا طریقہ نکل گیا. اس لیے اتباع سنت جو ہے اس میں محبوبیت کی شان ہے، اس کے ذریعے سے انسان اللہ کا محبوب بنے گا. تو مجاہدہ اتباع سنت میں جتنا مجاہدہ ہے، اتنا مجاہدہ کسی اور چیز میں نہیں ہے. کیسے بھائی؟ دیکھو، پوری رات جاگنا یہ سنت نہیں ہے، سونا اور پھر جاگنا یہ سنت اور یہ مجاہدہ ہے. کہ ایک انسان سو جائے تو بولا اٹھ نہیں سکوں گا، تو وہ سنت یہ ہے کہ تھوڑی دیر آرام کر لو اور پھر تھوڑی دیر جاگو بھی. تو یہ ہے کہ پوری رات جاگنا یہ سنت نہیں. جیسے ہمیشہ کے روزے رکھنا یہ سنت نہیں ہے ہمارے نبی کی، بلکہ ایک دن رکھنا اور ایک دن نہ رکھنا، تو یہ سنت اور یہ مجاہدہ زیادہ ہے. ہمیشہ رکھنا تو عادت بن جائے گی، عادت بن جائے گی، لیکن ایک دن رکھنا، ایک دن چھوڑنا، فرمایا یہ مجاہدہ ہے. تو سونا جاگنا پوری رات یہ تو آسان ہے، لیکن سونا پھر جاگنا یہ بڑا، یہ سنت ہے. اس لیے یاد رکھنا، سنت میں مجاہدہ ہے. فرمایا اپنی مرضی سے چلنا یہ سنت نہیں ہے، اور اطاعت میں چلنا یہ سنت ہے. تو آج مان کر چلنے میں مجاہدہ ہے، اپنی مرضی سے چلنے میں مجاہدہ نہیں. तो सुन्नत सुन्नत में है ही मुजाहदा, को आसान काम नहीं है। आज हमसे जो छूट रही है वो सुन्नतें छूट रही है, लिबास से सुन्नतें छूट गई। देखो सतर छुपाना फर्ज है, आपने फर्ज तो अदा कर लिया, लेकिन उस सतर को जो छुपाना फर्ज है उसको नबवी तरीके पर पूरा करो, तो फिर वो सुन्नत हो गई। तो फिर उसमें महबूबियत भी है, उसमें मुजाहदा भी है, और उसमें हमारी तरक्की भी है। तो सतर तो छुपा लिया, लेकिन कटिंग तो गैरों की ले ली, तो फिर कहां का वो हुआ? तो अब वो इबादत न बनी। जी, तो इसी वजह से फरमाया कि इत्तिबाए सुन्नत की खासियत महबूबियत है। जैसे कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाया, इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिउनी युहबिबकुम अल्लाह, यानी अगर तुम अल्लाह ताला से मोहब्बत करते हो, इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, अगर तुम अल्लाह ताला से मोहब्बत करते हो तो मेरी इत्तिबा करो, मेरी इत्तिबा करो, अल्लाह ताला तुमसे मोहब्बत करेंगे और तुम अल्लाह ताला के महबूब बन जाओगे, तुम अल्लाह ताला के महबूब बन जाओगे। पहले फरमाया कि अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो, फिर आगे फरमाया कि अल्लाह ताला तुमसे मोहब्बत करेंगे। लिहाजा इत्तिबाए सुन्नत के अंदर महबूबियत की शान पाई जाती है, इत्तिबाए सुन्नत के अंदर महबूबियत की शान पाई जाती है, और वो मखलूक की महबूबियत नहीं बल्कि अल्लाह जल्ले शानहु की महबूबियत है। हमारे हजरत वाला रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, देखो इत्तिबाए सुन्नत के अंदर एक बात इसमें और समझ लो, अल्लाह की महबूबियत मिलेगी लेकिन मखलूक की महबूबियत में कमी होगी, और लोगों के गैरों के तरीके पर चलने में मखलूक की महबूबियत मिलती है, अल्लाह की मोहब्बत बिल्कुल नहीं मिलती। अब जब एक इंसान को अल्लाह की महबूबियत मिल गई तो मखलूक की महबूबियत भी मिलेगी, लेकिन वो थोड़ा देर से मिलेगी। हाँ, तो आज इंसान यहां घबरा जाता, अरे बोले लोग तो मेरे से तो नफरत करने वाले बन गए, मेरे से तो दूर हो गए, मैं तो सुन्नत पर अमल करना शुरू कर दिया, जरा लिबास सुन्नत के मुताबिक पहनो, तो ये सारी चीजें में फिर वो हो जाएगी। तो फरमाया देखो इत्तेबाए सुन्नत के अंदर महबूबियत की शान पाई जाती है, और वो मखलूक की महबूबियत नहीं है बल्कि अल्लाह जल्ले शानू की महबूबियत है। हमारे हजरत वाला रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि जिस वक्त कोई मुसलमान बैतुल खला में दाखिल होते वक्त इत्तिबाए सुन्नत की नीयत से अपना बाया पांव दाखिल कर रहा है और ये दुआ पढ़ रहा है, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊदु बिका मिनल खुबुस वल खबाइस, उस वक्त वो मुसलमान अल्लाह ताला का महबूब बन रहा है। अल्लाह, वो क्योंकि वो सुन्नत के मुताबिक जब दाखिल हो रहा है तो वो अल्लाह ताला का महबूब बन रहा है। लिहाजा जो शख्स इत्तिबाए सुन्नत कर रहा है वो अल्लाह ताला का महबूब बन रहा है, गोया कि अल्लाह मुहिब और वो शख्स महबूब, अल्लाह मुहिब मोहब्बत करने वाला, और हम अल्लाह के महबूब बन गए। महबूब और मोहब्बत की खासियत है, मोहब्बत की खासियत है जज्ब करना, यानी मुहिब महबूब को अपनी तरफ खींचता है। सुभान अल्लाह, मुहिब महबूब महबूबियत की मोहब्बत की खासियत क्या, जज्ब करना, एक दूसरे के अंदर खींच जाना। तो अल्लाह मुहिब है, हम महबूब है, तो अल्लाह हमें बंदों को अपनी तरफ खींच लेता है, खींचता है, और महबूब मुहिब को अपनी तरफ खींचता है। इसलिए जब इंसान इत्तिबाए सुन्नत करता है तो अल्लाह ताला का महबूब बन जाता है। अल्लाह अकबर, देखो मुजाहदा सबसे बड़ा इत्तिबाए सुन्नत, फिर अल्लाह ताला उसको अपनी तरफ खींच लेते हैं, फिर अल्लाह ताला उसको अपनी तरफ खींच लेते हैं, इस तरह जज्बे के जरिए उसको वसूल इलल्लाह हासिल हो जाता है। फिर वो वसूल हो गया, जज्ब हुआ ना, जज्ब, जब सुन्नत पर इंसान चलता है तो फिर अल्लाह उसको अपने महबूब बना ही लेते हैं, जज्ब करते। जाहिर है कि जब अल्लाह ताला खींच लेंगे तो उसके जरिए वसूल जल्दी होगा, उसके मुकाबले में अगर इंसान खुद चलकर जाए, एक तो खुद चलकर जाए और एक अल्लाह उसको खुद खींच ले, दोनों में फर्क है, खुद कर चल कर जाए तो वसूल देर से होगा। इसलिए फरमाया कि इत्तिबाए सुन्नत में वसूल तेजी से होता है, और दूसरे जराए जो सूफियाई किराम ने इख्तियार किए हैं वो सब तरीके भी जायज और मबा है, लेकिन उनके जरिए वसूल इतनी तेजी से नहीं होता जितनी इत्तिबाए सुन्नत से होता है। जी, तो इत्तिबाए सुन्नत की नियत करें, इंशाल्लाह नियत करें हम सब के सब कि आज के बाद इंशाल्लाह हर काम को सुन्नत के मुताबिक करेंगे और सुन्नत की किताब को ढूंढे उसमें कि ये अमल को कैसे करना है, उसके सुन्नत तरीका क्या है, और उसको कोशिश करें इंशाल्लाह। अभी एक पेज है, इसको पूरा कर लेते, एक एक सुन्नत पर अमल करते जाए। हमारे हजरत डॉक्टर अब्दुल हई साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया कर रहे, अरे मियाँ तसव्वुफ की इन इस्तेलाहात के फेरे में मत पड़ो। तसव्वुफ के अंदर इस्तेलाहात होती है ना, टर्मिनोलॉजी, तो उसकी इस्तेलाहात में फेरे में मत पड़ो, सीधा सीधा अमल करो। वो ये कि हुजूर अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो सुन्नत मनकूल है उनमें से एक एक सुन्नत को सीखते जाओ, उन पर अमल करते जाओ, इंशाअल्लाह मंजिल पर पहुंच जाओगे। इसलिए हमारे बुजुर्गों की तालीम और तरबियत का खुलासा इत्तिबाए सुन्नत है। हाँ, इत्तिबाए सुन्नत है। हजरत फरमाया करते थे कि उसवे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से मैंने तुम्हारे लिए एक डायरी बना दी है। हजरत डॉक्टर अब्दुल हई फरमा, उन्हीं की लिखी हुई है ना उसवे रसूल अकरम, कि तुम्हारे लिए एक डायरी बना दी है, उसमें सब सुन्नतें लिख दी है कि इस तरह सोना है, इस तरह जागना है, इस तरह उठना है, इस तरह बैठना है, इस तरह खाना है, इस तरह पीना है, इस तरह बातें करना है। उसकी भी हमारी तालीम हो चुकी थी, दर्स हो गया था, दोबारा फिर पढ़ ले। तो फरमाया इत्तिबाए सुन्नत के अंदर, इसीलिए अल्लाह ताला ने हमें जो दावत और तबलीग का काम जो दिया है उसमें भी इत्तिबाए सुन्नत ही ज्यादा है। इसीलिए उसमें शोशा नहीं है, कुछ वो नहीं है, बल्कि इंसान आने के बाद रुक जाता है, सोहबत न मिलने की वजह से थोड़ा सा बैठ जाता है। तो इस काम को सही तरीके से, सही नीयतों से और सही लोगों के पास बैठकर सीखे और अमल करे, तमाम सुन्नतों पर अमल करो। अलबत्ता मैं सब हजरात से एक बात और अर्ज करता हूं कि इत्तिबाए सुन्नत की कुछ बातें तो मशहूर है, मसलन कि जब मस्जिद में दाखिल हो तो दायां पाँव पहले दाखिल करो, जब बाहर निकलो तो बायां लेफ्ट पाँव पहले दाखिल बाहर यानी निकालो, खाना दाहिने हाथ से खाओ, खाने से पहले हाथ धो लो, बिस्मिल्लाह पढ़कर शुरू करो, बैठकर पानी पियो, तीन सांस में पानी पियो, पानी पीने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह कहो, वगैरह वगैरह। ये सब हुजूर अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है और काबिले तकलीद है, यानी करना चाहिए, सब में बड़ी फजीलत है। लेकिन सुन्नत सिर्फ इनके अंदर महदूद नहीं, हम इसी के अंदर महदूद कर लिया, सुन्नत इनके अंदर महदूद नहीं, बल्कि लोगों के साथ किस तरह पेश आना, हमारे अखलाक कैसे होने चाहिए, हिल्म बुर्दबारी इख्तियार करना, गुस्सा न करना, ये भी सुन, लोगों के साथ हुस्ने सुलूक करना, ये सब भी सुन्नत है। लिहाजा अखलाक से मुताल्लिक, मामलात से मुताल्लिक, माशरत से मुताल्लिक भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, ये उसमें रसूल अकरम के अंदर सब है। मसलन ये भी सुन्नत है कि जब तोलो तो झुकता हुआ तोलो, और दूसरों को बढ़ता हुआ तो बढ़ाई करो, और अगर दूसरों से कोई हक लेना है तो उसके खातिर थोड़ा हक छोड़ना पड़े तो छोड़ दो, और जब दूसरों को देना है तो ज्यादा करके दो, देने में अपने दिल को कुशादा रखो, ये सब भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। लिहाजा जिस तरह इन मशहूर सुन्नतों पर अमल करने का जितना एहतमाम करते हैं, उतना ही उन सुन्नतों पर भी अमल करने का एहतमाम करना चाहिए। अल्लाह ताला मुझे भी और आप सबको भी इन सुन्नतों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। थोड़ी देर मुराकबा कर लें।